स्वतंत्रता प्रभात।
दोस्तों, इस्लामी क्रांति की सफलता के बारे में विशेष कार्यक्रम के साथ उपस्थित हैं रविश जैदी और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, ये बात सर्वविदित है कि फरवरी 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति सफल हुई थी। इस क्रांति ने बहुत से परिवर्तन किए, जिसने न केवल ईरान को बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी प्रभावित किया था। ईरान की इस्लामिक क्रांति और विश्व की अन्य क्रांतियों में सबसे बड़ा अंतर ये था कि वो इस्लामी भी थी और धार्मिक भी। ईरान की इस्लामी शासन व्यवस्था के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी, जहाँ पर दुनिया में एक धर्मगुरु के रूप में जाने जाते थे, वहीं पर ईरान के भीतर उनको क्रांति के नेता और मार्गदर्शक के रूप में भी देखा जाता था।
जनता में वे बहुत अधिक लोकप्रिय थे। जनता के बीच स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का प्रभाव इतना अधिक था कि लोग उनकी हर बात मानने के लिए तैयार रहते थे। लोग इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बातों को गौर से सुनने और उन पर अमल किया करते थे। उनकी इस लोकप्रियता का पता उस समय चला जब वे 1 फरवरी 1979 को लंबे देश निकाले के बाद स्वदेश वापस आए थे। लोगों के बीच उनका मान सम्मान उनके जीवन काल में और उसके बाद भी बाकी रहा।
इस्लामी क्रांति पूरी तरह से क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों में ध्यान का केंद्र बनी रही। इसी प्रकार क्षेत्रीय समीकरणों पर इसका अधिक असर रहा है। इस्लामिक क्रांति इमाम खुमैनी के नेतृत्व में ही सफल हुई। उन्होंने इस क्रांति को सफल बनाकर इतिहास रच दिया। 20वीं शताब्दी की इस महाघटना ने एक ओर दुनिया पर छाई दो ध्रुवीय व्यवस्था को उलट दिया, तो दूसरी ओर ऐसे शासन को जड़ से उखाड़ फेंका जो बाहरी शक्तियों पर निर्भर था। इसको बहुत मजबूत शासन समझा जाता था, क्योंकि उसे बड़े शक्तियों का पूरा समर्थन हासिल था।
दोस्तों, ईरान जैसे देश में जो स्ट्रेटेजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत अहम है, स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ऐसा बड़ा राजनीतिक बदलाव लाए जो जनता पर आधारित है। इस्लामी क्रांति ने मुसलमान देशों के भीतर जो गहरी जागरूकता पैदा की, उससे वहां पर गहरे राजनीतिक बदलाव व राजनीतिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि प्रशस्त हुई। इस क्रांति से एक बार फिर इस्लाम को दुनिया में एक निर्णायक शक्ति के रूप में पहचानवाया। वैचारिक आधार, नेतृत्व क्षमता और क्रांति से उत्पन्न गहरे बदलाव में बहुत से राजनैतिक पंडितों को क्रांति की अवधारणाओं के बारे में पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। इस्लामी क्रांति की सफलता की वर्षगांठ इस बात का अवसर देती है कि हम इस बात को फिर से समझें कि ये क्रांति किस तरह से सफल हुई। इस क्रांति के ईरान सहित दुनिया पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव के दृष्टिगत इसमें युवा पीढ़ी को बताने के लिए बहुत कुछ मौजूद है।
इस्लामी क्रांति को सफल बनाने में स्वर्गीय इमाम खुमैनी के साथ ऐसे साथी थे जिनका क्रांति की सफलता और इस्लामी गणतंत्र व्यवस्था को मजबूत बनाने में प्रभावी योगदान रहा है। इमाम खुमैनी के इन सभी साथियों का पूरे संघर्ष के दौरान अत्याचारी शाही शासन के तत्वों की ओर से या तो पीछा किया जाता रहा या उन्हें जेलों में कैद किया गया। उनमें से कुछ को देश निकाल दिया गया। ईरान में इस्लामी क्रांति के दौरान शहर व गाँव की जनता के सभी वर्गों की भागीदारी का मुख्य कारण ये था कि देश के आम लोग शाही व्यवस्था से बहुत नफरत करते थे। शाही सरकार ने देश में घुटन का माहौल बना रखा था। इस शासन ने आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए अनगिनत अपराध किए थे। इमाम खुमैनी के साथियों ने अपने समय के सबसे खतरनाक जासूसी संगठन सावाक की ओर से दी गई यातनाओं का जो उल्लेख किया है, उसे देश में व्याप्त घुटन के माहौल के एक भाग का अंदाज़ा होता है।
जब स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामी व्यवस्था के गठन की बात कही तो लोगों ने उनकी बात को तुरंत स्वीकार कर लिया। इमाम खुमैनी वरिष्ठ धर्मगुरु थे और इस्लामी क्रांति और इस्लामी सिद्धांतों पर पूरी तरह से कटिबद्ध थे। वे इस्लामी शिक्षाओं और नियमों को लागू करने पर बल दिया करते थे। उनका कहना था कि हमारे धार्मिक आदेशों ने जो सबसे अच्छे हैं हमारे मार्ग को निर्धारित कर दिया है। हमने दुनिया के सबसे श्रेष्ठ और महानतम व्यक्ति हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नेतृत्व को स्वीकार किया। हम उनकी बताई हुई बातों और उनके द्वारा पेश किए गए नियमों पर कटिबद्ध होकर उन समस्त शक्तियों से संघर्ष करेंगे जो हमारे राष्ट्र और हमारे देश पर अतिक्रमण करेंगे।
इस्लाम धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा हिंसा से दूरी है। ये शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं के समाधान के प्रयास पर बल देती है। ये इसलिए है कि ईश्वरीय धर्म दयालुता और कृपा का प्रतीक है। इसी आधार पर इस्लाम धर्म की पहचान रखने वाले के रूप में स्वर्गीय इमाम खुमैनी स्वयं को इस्लामी कानूनों के क्रियान्वयन पर कटिबद्ध समझते थे। इस्लामी क्रांति की सफलता के लिए उन्होंने अपनी रणनीति को ऐसा बनाया था कि जितना संभव हो सके कम से कम जनता को नुकसान पहुंचे। अलबत्ता ये कार्य बहुत ही कठिन था क्योंकि दुश्मन किसी भी प्रकार के अपराध में तनिक भी संकुच से काम नहीं ले रहा था।
ईरान की मुसलमान जनता ने इस्लामी शिक्षाओं के आधार पर अपने देश के लिए इस्लामी शासन व्यवस्था का चयन ऐसी स्थिति में किया था कि जब पश्चिम में प्रचारित हथकंडों के माध्यम से लोगों को धर्म से दूर किया जा रहा था, वहाँ पर नैतिकता का पतन बहुत तेज़ी से आरंभ हो चुका था। ईरान की इस्लामी क्रांति क्योंकि इस्लामी शिक्षाओं पर आधारित थी, इसलिए इसकी सफलता से इस्लाम विरोधी शक्तियाँ बहुत क्रोधित हुईं। ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद से लोगों विशेषकर युवाओं के बीच धर्म के प्रति लगाव में वृद्धि हुई।
वास्तविकता यह है कि पहलवी शासन के वर्षों के धर्म विरोधी दुष्प्रचारों के बाद ईरानी राष्ट्र ने पुनः अपना धार्मिक स्वरूप हासिल किया था। लोगों के भीतर इस्लामी आस्था मजबूत होती जा रही थी। इस्लामी क्रांति के पश्चात ईरान में मस्जिदों के भीतर लोगों का आना जाना बढ़ गया। देश में धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन में वृद्धि हुई। बात इतनी बढ़ गई कि देश के युवाओं ने मस्जिदों को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाना शुरू कर दिया। जब सन 1980 में सद्दाम की सेना ने ईरान पर हमला किया तो मस्जिदों से ही योद्धाओं को मोर्चों पर भेजने का काम किया गया। यहीं से उनके लिए लोगों की सहायता जाया करती थी। इस्लामिक क्रांति को सफल बनाने और उसके बाद ईरान पर थोपे गए युद्ध के दौरान मस्जिदों की भूमिका उल्लेखनीय रही, जिसको किसी भी सूरत में भुलाया नहीं जा सकता।
स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने ऐसे हालात में ऐसी शासन व्यवस्था के विचार को पेश किया जब धर्म विरोधी विचारधारा के अंतर्गत धर्म को राजनीति से अलग रखने वाली सोच अर्थात सेक्युलरिज्म राजनीति के मंच पर सक्रिय थी। यहाँ तक कि धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के बीच भी धार्मिक प्रजातंत्र के विचार को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। ऐसे हालात में एक धर्मगुरु द्वारा इस तरह के विचार को पेश करना और उसे लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाना एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम था।
स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने धार्मिक प्रजातंत्र या इस्लामी गणतंत्र का विचार पेश करके उन विचारकों और अपने बीच एक बहुत ही स्पष्ट रेखा खींच दी जो इस्लाम और प्रजातंत्र के बीच सांठगांठ की कोशिश में लगे हुए थे। इमाम खुमैनी का मानना था कि इस्लाम के स्वभाव में ही प्रजातंत्र पाया जाता है। इस्लाम प्रजातंत्र का समर्थक है। इस धर्म में जनता की राय को महत्व देना कोई दिखावा नहीं बल्कि एक सच्चाई है। ये वो सच्चाई है जिसकी जड़ें इस्लामी सिद्धांतों से मिली हुई हैं।
स्वर्गीय इमाम खुमैनी की नज़र में इस्लाम में प्रजातंत्र और धार्मिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था संयोगवश घटना नहीं है जिसे पश्चिम से लिया हो या उसको ज़बरदस्ती आपस में समन्वित किया हो, बल्कि प्रजातंत्र और धर्म एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। इस व्यवस्था में इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की अनुपस्थिति में सरकार के गठन का आधार जनता की राय को बनाया गया है। स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में विश्व के मोक्षदाता की अनुपस्थिति में वरिष्ठ धर्मगुरु की सरकार वैध है, लेकिन इसका गठन जनता की मर्जी पर निर्भर है। यहाँ तक कि जनता की राय के बिना वरिष्ठ धर्मगुरु सरकार का गठन नहीं कर सकता है। ये मुद्दा खुला हुआ लोकतंत्र है।
धार्मिक प्रजातंत्र के स्वभाव का तकाजा यह है कि इसमें सभी बिंदु धार्मिक सिद्धांतों व मूल्यों के आधार पर लागू किए जाएं। यही कारण है कि इस्लामी गणतंत्र के संविधान में इस महत्वपूर्ण तत्व का विभिन्न नियमों में पालन किया गया है। इसके पालन की सबसे अहम मिसाल वरिष्ठ धार्मिक नेतृत्व का गठन है। वरिष्ठ नेतृत्व व्यवस्था के इस्लामी व लोकतांत्रिक स्वरूप की रक्षा करता है। यूं तो धार्मिक प्रजातंत्र की जड़ इस्लामी इतिहास से मिलती है, लेकिन इसे लागू हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इसी कम समय के भीतर इसने राजनीतिक विचारधाराओं में अपनी जगह बना ली है। अब उम्मीद की जाती है कि इस्लामी जगत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में ये पहले से ज़्यादा अपना स्थान बनाएगी।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।